आपन्नः
आपन्नः
संस्कृतिं
संस्कृतिं
घोरां
घोरां
यन्नाम
यन्नाम
विवशो
विवशो
गृणन्
गृणन्
ततः
ततः
सद्यो
सद्यो
विमुच्यते
विमुच्यते
यद्विभेति
यद्विभेति
स्वयं
स्वयं
भयं
भयं
आपन्नः संस्कृतिं घोरां
आपन्नः संस्कृतिं घोरां
यन्नाम विवशो गृणन्
यन्नाम विवशो गृणन्
ततः सद्यो विमुच्येत
ततः सद्यो विमुच्येत
यद्विभेति स्वयं भयं
यद्विभेति स्वयं भयं
आपन्नः संस्कृतिं घोरां
आपन्नः संस्कृतिं घोरां
यन्नाम विवशो गृणन्
यन्नाम विवशो गृणन्
ततः सद्यो विमुच्येत
ततः सद्यो विमुच्येत
यद्विभेति स्वयं भयं
यद्विभेति स्वयं भयं
आपन्नः संस्कृतिं घोरां
आपन्नः संस्कृतिं घोरां
यन्नाम विवशो गृणन्
यन्नाम विवशो गृणन्
ततः सद्यो विमुच्येत
ततः सद्यो विमुच्येत
यद्विभेति स्वयं भयं
यद्विभेति स्वयं भयं
आपन्नः
आपन्नः
फंसे हुए
संस्कृतिम
जन्म मृत्यु के चक्कर में
घोराम
अत्यंत उलझे
यत
जो
नाम
परम नाम विवशः अनजान में गृणन उच्चारण करते हुए तत् ततः उससे सद्यः तुरंत विमुच्येत मुक्त हो जाता है यत जो विभेति डरता है स्वयं स्वयं भयं साक्षात भय अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं क्योंकि साक्षात भय भी नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य वासुदेव या भगवान कृष्ण हरेक के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे महान असुर तथा अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी हैं। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की उनमें पहचान होती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। इससे सूचित होता है कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़ा संकट उपस्थित होने पर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चरित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। अनुवाद फिर से, जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी नाम से भयभीत रहता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं हिन्दूपुत्रे स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुं श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ये श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में भी यदि श्री कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु के भयंकर चक्कर से, क्योंकि साक्षात भय भी श्री कृष्ण के नाम से डरता है, तो भौतिक बंधन से तुरंत मुक्त होने का रास्ता यही एक है। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे कृष्ण सबसे शक्तिमान शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए सब उनसे घबराते हैं। हम किसी से डरते हैं तो क्यों डरते हैं, आप बताइए? हम किसी से यदि डरते हैं क्यों डरते हैं?
शक्तिशाली
हमसे ज्यादा शक्तिशाली है तब डरते हैं। हमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है तो हम क्यों डरेंगे किसी से, है ना? हम जब जा रहे हैं, अचानक कोई आएगा, अस्त्र शस्त्र लेके आएगा, हमारे पास कुछ नहीं, तो हम डरते हैं। उसके पास बहुत कुछ है, अनजाने में अचानक आके आक्रमण करेगा। तो यदि हमसे कोई ज्यादा शक्तिशाली है ऐसे हमें लगता है तो हम उससे डरते हैं। काल हमसे ज्यादा शक्तिशाली है क्योंकि काल के प्रभाव से कुछ भी हो सकता है। इस प्रकृति के नियम जो हैं ये हमसे शक्तिशाली है, ये हमको जन्म लेने के लिए, मरने के लिए, बूढ़ा होने के लिए, बीमार होने के लिए बाध्य करेंगे, जबरदस्ती हमको ये सब दिलाएंगे, तो ये सब हमसे शक्तिशाली है। तो ऐसे गिना जाए तो व्यक्ति जो बद्ध होता है इस संसार में वो हर क्षण भयभीत रहता है, क्योंकि इतने सारे चीजें होती हैं जो उससे ज्यादा शक्तिशाली है कि वो भयभीत रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति भय से मुक्त नहीं है। भागवत में बताया गया है भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्याद ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही, कि भय का कारण क्या है? जब हम श्री कृष्ण से विमुख हो जाते हैं और किसी अन्य वस्तु में अर्थात माया में हम मग्न हो जाते हैं तब भय उत्पन्न होता है। तो अब देखिए, क्या कृष्ण का भक्त अचानक पहलवान बन जाता है कि वो निडर हो जाता है? कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति भय से परे हो जाता है, निडर हो जाता है, किसी भी चीज से डरता नहीं। हम प्रहलाद महाराज के बारे में देखते हैं, हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था, उसने बहुत कुछ किया प्रहलाद को मारने के लिए, प्रहलाद डरे नहीं बिल्कुल। दुर्वासा मुनि ने अपने बाल से राक्षस उत्पन्न किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, पर अम्बरीश महाराज बिल्कुल भी डरे नहीं, उधर खड़े होके वो भगवान का स्मरण करते रहे। तो दुर्वासा मुनि के पास इतनी योग शक्ति थी, भयंकर राक्षस वगैरह उत्पन्न कर सकते थे, जो कि अम्बरीश महाराज के पास वो शक्ति नहीं थी। जो अस्त्र शस्त्र आदि हिरण्यकश्यप के पास थे, सैनिक थे, वो प्रहलाद के पास नहीं थे। प्रहलाद तो केवल 5 साल का बालक था। तो प्रहलाद से ज्यादा शक्तिशाली हिरण्यकश्यप था, महाराज अम्बरीश से ज्यादा शक्तिशाली दुर्वासा मुनि थे, लेकिन प्रहलाद महाराज और अम्बरीश महाराज बिल्कुल डरे नहीं। अभी अभी हम कह चुके हैं कि हम डरते कब हैं? जब हमसे कोई ज्यादा शक्तिशाली हो। लेकिन प्रहलाद से ज्यादा शक्तिशाली हिरण्यकश्यप थे, तो प्रहलाद क्यों नहीं डरे?
कृष्ण से विमुख नहीं
थे। हाँ, विमुख नहीं थे। तो विमुख नहीं होने से क्या होता है, हम निडर क्यों हो जाते हैं? कृष्ण रक्षा करेंगे। साधारण दुनिया में जब हम हमारे अंदर भय उत्पन्न होता है, हम सोचते हैं कि हमारी शक्ति से ज्यादा उस व्यक्ति की शक्ति है, इसलिए हम उससे डरते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति उसके शक्ति से कम है। लेकिन जब हम कृष्ण के शरण में जाते हैं तो हम ये नहीं विचार करते कि मेरी शक्ति कितनी है, हम क्या विचार करते हैं? कृष्ण की शक्ति कितनी है। हमने जिनका आश्रय लिया है वो कितने शक्तिशाली है, तो ये मेरा क्या बिगाड़ सकेगा? जब मैंने कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, कृष्ण का आश्रय लिया है, तो कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के सामने इसका शक्ति तो कुछ भी नहीं है, इसलिए निडर हो जाते हैं। हमारी शक्ति जब ज्यादा है तब हम निडर हो जाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा कोई शक्तिशाली आता है तो डर जाते हैं। हिरण्यकश्यप तो पहले डरता नहीं था, वो तो इतना घमंडी हो गया था क्योंकि उसका सामने करने वाला कोई नहीं था, ब्रह्मा जी ने इतने वरदान दिए थे। लेकिन हिरण्यकश्यप तब डरने लगा जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए और जोर से चीखने लगे। फिर भी युद्ध करते समय बीच बीच में लगता था कि मैं जीतूंगा, ऐसे हिरण्यकश्यप को लगता था। अंत में हिरण्यकश्यप को पता चला, फिर उसके मन में डर उत्पन्न हो गया। बल्कि जब वो प्रहलाद को नहीं मार सका बहुत प्रयास के बाद भी, तब उसके मन में डर उत्पन्न हो गया था कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ और इतना प्रयास करने के बाद भी इस 5 साल के बच्चे को मैं नहीं मार पा रहा हूँ, मेरे से सारे देवता घबराते हैं, सारा ब्रह्मांड कांपता है मेरे नाम से, और ये छोटा 5 साल का बच्चा मेरा पुत्र है, इतना कोशिश करने पर भी मैं उसको नहीं मार पा रहा हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सैकड़ों बार प्रयत्न किया, कभी जादू टोना से, कभी हाथी के पैर के नीचे कुचलाने का प्रयास किया, कभी एक ऐसे गड्ढे में डाला जहाँ जहरीले सांप थे, कभी आग में डाला, कभी समुन्द्र में डाल दिया, कभी त्रिशूल तलवार आदि से आक्रमण किया, क्या क्या नहीं किया। इतना सब करने के बाद भी प्रहलाद का एक बाल भी नहीं बका, तब हिरण्यकश्यप को डर पैदा हुआ। जब व्यक्ति अपने आप को शक्तिशाली मानता है, निडर होता है, लेकिन जब उसको मन में ये विचार आता है, हाँ मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कुछ है, मेरी शक्ति का टक्कर लेने वाला कुछ है, तब डर उत्पन्न होता है। लेकिन भक्त कुछ जानता है, शक्ति और योग्यता हमारी नहीं है, सब शक्ति भगवान की है। जब हिरण्यकश्यप डर के प्रहलाद को पूछते हैं कि अरे दुष्ट पुत्र, ये बताओ, तुमको मैं इतना शक्तिशाली हूँ तुम जानते हो, तो मेरा सामना करने की शक्ति तुमको कहाँ से आ रही है, इतना साहस तुमको कहाँ से आया, इतनी शक्ति कहाँ से आई तुम्हें? तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति ने आपको शक्ति दी उसने हमको भी शक्ति दी। तो हिरण्यकश्यप को और गुस्सा आया। सही बात है, तो हिरण्यकश्यप की जो शक्ति थी वो हिरण्यकश्यप की शक्ति नहीं, वो कृष्ण की शक्ति है जो कृष्ण ने हिरण्यकश्यप को प्रदान किया है। जितना भी कुछ यहाँ हमारे जगत में दिखाई पड़ता है वो सब कृष्ण की शक्ति है। कभी किसी व्यक्ति में कृष्ण अपनी शक्ति को ज्यादा प्रदर्शित करते हैं, किसी में कम करते हैं, किसी को ज्यादा बुद्धि देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज्यादा योग्यता देते हैं, किसी को कम देते हैं, लेकिन भले कम हो या ज्यादा वो आता है कृष्ण से, वो कृष्ण की ही योग्यता, बुद्धि, शक्ति, तेज आदि है जो कृष्ण कृपा करके अलग अलग जीवों को प्रदान करते हैं। तो प्रहलाद महाराज अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हिरण्यकश्यप की स्वतंत्र शक्ति नहीं है, कृष्ण चाहे तो ये शक्ति को निकाल सकते हैं। कितने शक्तिशाली व्यक्ति हुए, एक क्षण में कृष्ण ने उनकी शक्ति निकाल दी मृत्यु के समय। तो प्रहलाद महाराज को डर नहीं था क्योंकि वो अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं थे, वो कृष्ण की असीमित शक्ति पर निर्भर थे। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो अपनी शक्ति पर निर्भर था, इसलिए उसके अंदर भी डर आ गया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। तो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको किसी का भय नहीं लगता, लेकिन हरेक को उनके प्रति भय लगता है क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं। बड़े, जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि बड़े से बड़े हिरण्यकश्यप, रावण और कितने सारे ऐसे रहे जो बहुत शक्तिशाली थे, भगवान को भूलकर उन्होंने सोचा कि हम कितने शक्तिशाली हैं, कितने बड़े हैं, लेकिन जब भगवान का सामना किया तब उनको पता चला कि उनकी शक्ति क्या है और भगवान की शक्ति क्या है। इसलिए बताया जाता है, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उपनिषदों का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भीषास्माद् वातः पवते, भगवान के डर से वायु या पवन बहता है, हवा बहता है डर के मारे, क्योंकि वायु देव है, वो भी भगवान के सेवक है ना, भगवान के दास है, कृष्ण तो उनके प्रभु हैं, उनके स्वामी हैं, तो दास कभी कभी डरता है कि मैं मेरा काम करना चाहिए, नहीं तो दंडित हो जाऊंगा, नहीं तो स्वामी हमको दंड देंगे, तो वायु भी बहता है भगवान के डर से, भीषास्मान वातः पवते, भीषो देति सूर्यः, फिर सूर्य अपनी उष्णता और प्रकाश देता है कृष्ण के डर के मारे, हम नहीं देंगे तो दंडित हो जाएंगे। भीषास्माद अग्निश्चंद्रश्च, तो अग्नि अपनी उष्णता प्रदान करती है और चंद्र भी अपने शीतल किरणों को प्रदान करता है कृष्ण के डर से। यहाँ तक कि मृत्युर धावति पंचमः, मृत्यु भी हरेक का पीछा करता है, किसी को छोड़ता नहीं है कृष्ण के डर से। कभी ऐसा नहीं है कि मृत्यु किसी एक व्यक्ति को पकड़ना भूल जाती है या छोड़ती है, चलो कृपा करो इसके ऊपर, इसको भूल जाओ चलो, नहीं नहीं, कृष्ण का आदेश है हमको हरेक का पीछा करना चाहिए, हरेक को पकड़ लेना चाहिए, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं गलती से भी ऐसा कर नहीं सकते हैं, हरेक व्यक्ति को पकड़ना ही चाहिए, नहीं पकड़ेंगे तो हम पकड़े जाएंगे कृष्ण के द्वारा। तो मृत्यु भी हरेक का पीछा करती है और हरेक को पकड़ती है कृष्ण के भय से, इसलिए सभी लोग कृष्ण से भयभीत होते। यहाँ तक कि इस श्लोक में बताया गया है, यद विभेति स्वयं भयम्, भगवान और उनके नाम से स्वयं मूर्तिमान भय भी भयभीत होता है। और सबसे बड़ा भय क्या है इस जगत में? मृत्यु। तो जब यहाँ कहा जाता है कि मूर्तिमान भय भी भयभीत होता है, तो हमें समझना चाहिए कि मृत्यु भी भयभीत होता है। तो यहाँ कोई नहीं है भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में जो भगवान कृष्ण का सामना कर सकता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के सामने हरेक डरता है। और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण और उनके नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वाम नाम नामिनो हो, अभिन्नत्वाम, अभिन्न है क्या नाम और नामी, नामी मतलब क्या जिनका नाम है वो नामी, नाम मतलब कृष्ण नाम, चैतन्य रस विग्रह, ये नाम के गुण है, ये रस की मूर्ति है। अभिन्नत्वाम और नाम में, और जो नामी है मतलब जिनका नाम है कृष्ण, और कृष्ण के नाम में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। शिक्षाष्टकम का कौन सा श्लोक है? नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापित नियमित स्मरणेन काल। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने नाम में अपनी समस्त शक्तियों को अर्पण कर दिया है। इसे जैसे प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में कि कृष्ण नाम में उतनी ही शक्ति है जितना कि कृष्ण में है। तो कृष्ण की शक्ति असीमित है, अपार है, उसी प्रकार से कृष्ण नाम की शक्ति भी असीमित है, अपार है। तो जिस प्रकार से बड़े व्यक्ति यहाँ तक भय भी कृष्ण से डरते हैं, उसी प्रकार से वो कृष्ण नाम से भी डरते हैं। इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो व्यक्ति यन नाम विवशो ग्रणन, जो विवश मतलब यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि अनजाने में भी, ये नहीं जानते हुए कि भी मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, यदि गलती से अनजाने में भी कोई कृष्ण का नाम लेता है तो तुरंत आपन्नः संस्कृतिम घोराम तत्ततः सद्यो विमुच्यते। ये भयंकर जो संस्कृति है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे सद्य तुरंत विमुच्येत मुक्त हो जाता है केवल भगवान का नाम लेने से। कितनी अद्भुत बात है, क्योंकि भय, आहार निद्रा भय मैथुन, ये है ना चार बंधन इस भौतिक जगत के, और तरह तरह के कष्ट हैं, तरह तरह के देवता हैं जो चीजों का देखभाल करते हैं, वो सब कृष्ण से डरते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम लेने से व्यक्ति पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। कौन सा वो भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का? भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंदरे। तो जब हम कृष्ण का भजन करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हम निडर हो जाते हैं, हम अभय हो जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कृष्ण नाम है अर्थात कृष्ण है, तो कोई भय का काम नहीं है। और इसके लिए एक साधारण उदाहरण दिया जा सकता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत कमजोर होता है, उसके पास ज्यादा शक्ति नहीं होती है। और कभी कभी ऐसे देखा जाता है कि छोटे बच्चों को, उनसे जो बड़े बच्चे होते हैं, वो उनको कभी तंग करते हैं, कभी मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, ऐसे होता है ना। लेकिन वो छोटा बच्चा अपने पिताजी के हाथ पकड़ कर यदि जा रहा है और सामने से वो बड़ा बच्चा आया, तो वो डरता है? क्यों नहीं डरता है? पिताजी है, वो दूसरा लड़का भाग जाएगा, है ना। वो बड़ा लड़का जो है वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि ये छोटे बच्चे को पूरा विश्वास है, मेरा पिताजी शक्तिमान है, मेरे पिताजी रहेंगे तो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। उसी तरह से भक्त को विश्वास रहता है, मेरे कृष्ण मेरे साथ है, मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ तो मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो हमारे जीवन में भी जब भी संकट आते हैं, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए। संकट भी एक तूफान की तरह है ना, तूफान आता है तो तहस नहस करके चले जाता है ना, उल्टा पुल्टा सब करके चला जाता है। ऐसे हमारे जीवन में संकट आते हैं तो ये तूफान के बराबर है। तो जब जीवन में संकट आते हैं तो हम क्या करते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं और रोने लगते हैं, भगवान देखो ये समस्या है, ये समस्या है, कितना कष्ट है, कितना कष्ट है, देखो कितना बड़ा समस्या है मेरा। तो एक भक्त बता रहे थे कि इसके बजाय कि हम कृष्ण के पास जाकर बोलें कि कृष्ण देखो मेरे जीवन में इतना बड़ा तूफान आया, हमको तूफान के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि देखो मेरे पास कृष्ण कितने बड़े हैं, कितने शक्तिशाली हैं। कृष्ण को सुनाने के बजाय कि मेरा तूफान कितना शक्तिशाली है, तूफान को जाके सुनाना चाहिए कि मेरा कृष्ण कितना शक्तिशाली है, फिर तूफान भाग जाएगा। है कि नहीं? कोई कृष्ण का सामना नहीं कर सकता है तो तूफान भी नहीं करेगा, वो भी भाग जाएगा। तो जब हम तूफान का सामना ऐसा करते हैं तो हमारा संकट भी मन से दूर चले जाएगा, निर्भय हो जाएंगे, भले वो संकट रहे न रहे, कि हमारा चित्त शांत और अच्छा हो जाएगा। इसलिए हमें कृष्ण नाम के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, यही एकमात्र उपाय है हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके मन के सुख और शांति के लिए, निर्भयता के लिए। जो भी हमें आवश्यक है इस दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में, वो सब भगवान के नाम से उत्पन्न होगा। जो भी चाहिए भगवान के नाम को वो दे देंगे, डर डर के जो भी है सब दे देंगे। जब राजा आता है जगह जगह, तो हर एक आदमी सामने आके अपना अपना सब कुछ दे देता है, नहीं राजा बहुत शक्तिशाली है। उसी तरह से कृष्ण नाम जब होता है तो हर चीज की प्राप्ति हमको हो सकती है। कृष्णदास बाबा जी प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, तो उनको एक बार एक भक्त ने पूछा कि हमको कृष्ण प्रेम कैसे मिल सकता है। तो उन्होंने उत्तर दिया, डाको। डाकू नहीं, डाको। बंगला में डाको का क्या मतलब है? ये शब्द आपने कहाँ सुना है, कौन से भजन में? प्रेम डाको, प्रेम डाको चैतन्य निताय। क्या मतलब? और एक है, गृहे थाको वने थाको सदा हरी बोले डाको। सदा हरी बोले डाको मतलब, डाको मतलब बुलाना, पुकारना। तो कृष्णदास बाबा जी के कहने का मतलब है पुकारो किनको, कृष्ण नाम को, कृष्ण को पुकारो, डाको कृष्ण को पुकारो, बस कृष्ण पे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। केवल इतना है कि हम लोग पुकारते नहीं हैं, पुकारना सीखना चाहिए, कैसे कृष्ण को पुकारना चाहिए। प्रभुपाद कहते थे कि कृष्ण को ऐसे पुकारना चाहिए जैसे बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है। माँ को कैसे पुकारता है बच्चा, जब एकदम विवश होता है चीख चीख के पुकारा, हमको जब के समय ऐसे चीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाव ऐसा होना चाहिए। और जब कृष्ण को पुकारेंगे सही भाव से, कृष्ण के नाम को लेंगे, उस समय डर वर सब दूर चले जाएगा, कुछ रहेगा नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। एक बार एक बच्चा था, हम कल ही प्रोग्राम में कहानी बता रहे थे, कथा बता रहे थे। एक बच्चा अपने खटिया पे सो रहा था, वो किसी न किसी तरह से वो खटिया से गिर गया, नीचे गिरा जमीन पे, धड़ाक से आवाज आया, उसको लगा जोर से चीख चीख के रोने लगा माँ के लिए। माँ को दूसरा काम कर रही थी दूसरे कमरे में। बच्चे ने जब जोर से ऐसे पुकारा माँ को, तो अपना काम छोड़कर तुरंत चली गई, बच्चे को उठाया, थोड़ा रोना वोना बंद करा दिया, और उसको फिर अच्छा रसगुल्ला वगैरह दिया खाने को। फिर बच्चे ने शांत हो गया, रसगुल्ला भी खा लिया, मीठा मीठा सब अच्छा खा लिया, शांत हो गया। फिर बाद में जब माँ चली गई, थोड़ी देर के बाद बच्चे का बुद्धि चलने लगा। क्या बुद्धि चला? रोने से, हाँ, माँ को बुलाने से रसगुल्ला मिलता है। तो फिर बच्चे ने क्या किया, सोचा चलो ये अच्छा बात है, और भी रोएंगे तो अच्छा भी रसगुल्ला मिल जाएगा। तो फिर से रोना शुरू किया, माँ का नाम लिया, लेकिन इस बार माँ नहीं आई, और जोर से नहीं आई। फिर बाद में आराम से माँ आई, तो बच्चे ने बोला इतना बुरा बुला रहे क्यों नहीं आई हमारे पास, पिछली बार तो आए थे, एक बार बुला इतना जल्दी भाग के आए, अब दूसरी बार बुलाया 10 बार बुलाया नहीं आए। तो माँ ने जवाब दिया, पहली बार जब तुमने बुलाया तुमने मुझे बुलाया, तुम मुझे चाहते थे इसलिए मैं चली आई, दूसरी बार तुमने रसगुल्ला के लिए मुझे रसगुल्ला को बुलाया इसलिए मैं नहीं आई, तुम रसगुल्ला चाहते थे, पहली बार तो मुझे चाहते थे तो मैं आई, बाद में जब बुलाया तुम रसगुल्ला चाहते थे मुझे नहीं चाहते थे इसलिए मैं देर से नहीं देर से आई। उसी प्रकार से हम कृष्ण को जब पुकारते हैं डाको, तो कृष्ण को पुकारेंगे यदि उस भाव से जैसा बच्चा माँ को पुकारता है, तो कृष्ण क्या करेंगे, ततः सद्यः तुरंत प्रकट हो जाएंगे, जल्दी प्रकट हो जाएंगे, आराम देर नहीं लगाएंगे, आराम से आएंगे, वेटिंग लिस्ट में टिकट नहीं मिला भी रखेंगे ऐसा नहीं, तुरंत चले आएंगे। जैसे कि गजेंद्र के लिए किया, जब तक गजेंद्र ने पुकारा नहीं डाको, जब तक उन्होंने पुकारा नहीं तब तक भगवान आराम से रहे वैकुंठ में, लेकिन जब पुकारा गजेंद्र ने हृदय से निस्सहाय भाव से भगवान का नाम लिया, भगवान की स्तुति की, तुरंत गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर भगवान विष्णु उस स्थान में आए और गजेंद्र का उद्धार कर दिया, गजेंद्र को मुक्त कर दिया। तो उसी प्रकार से जब हम पुकारते हैं कृष्ण को, कृष्ण तुरंत आएंगे। जब तक द्रौपदी ने अपने बल का सहारा लिया, अपने पतियों के बल का सहारा लिया, और जितने भी बुजुर्ग और उधर थे, वरिष्ठ लोग थे सभा में, भीष्म आदि, उनका सहारा लिया, उनसे रक्षा की अपेक्षा की, तब तक कृष्ण नहीं आए। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था राजसभा में, लेकिन जब द्रौपदी देवी के सारे आश्रय खत्म हो गए दुनिया के, दो हाथों से अपने आप को पकड़ रहे थे, फिर एक हाथ ऊपर करके पुकारा, फिर भी कृष्ण नहीं आए, लेकिन दोनों हाथ ऊपर करके पुकारा, माम एकम शरणम व्रज, पूरी तरह से शत प्रतिशत शरण में चली गई, तब तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए, उनके वस्त्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया। तो जब हम कृष्ण को पुकारते हैं और हृदय से पुकारते हैं, रसगुल्ला के लिए नहीं, कृष्ण के लिए पुकारते हैं, यदि हम किसी और वस्तु के लिए कृष्ण को पुकारेंगे कि कृष्ण हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, तो कृष्ण आराम से आएंगे, जल्दी से नहीं। लेकिन कृष्ण हमें आप चाहिए, आपका शुद्ध प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, जब इसके लिए पुकारेंगे तब तुरंत कृष्ण आएंगे, नहीं तो आराम से आएंगे, और बहुत जगह जगह इधर उधर काम कर करके फिर आएंगे। बहुत लोगों का उद्धार करना है ना, तो इधर जाएंगे उधर जाएंगे चले आएंगे। लेकिन जब हम उस सही भाव से बुलाएंगे तो सब कुछ छोड़कर, यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी को भी छोड़कर तुरंत भाग के आएंगे गरुड़ जी के ऊपर सवार होकर। इसलिए ये कृष्ण नाम की शक्ति है, लेकिन कृष्ण नाम को सही ढंग से लेना चाहिए, इतना ही है। निस्सहाय भाव जब नाम को पुकारते हैं तो सब कुछ खुल जाता है, विमुच्यते हैं, मुक्त हो जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। एक ब्रह्मचारी, कई साल पहले की बात है, वो अपना अनुभव बता रहे थे। आप में से कितने भक्त बंबई गए हैं पता नहीं, लेकिन बंबई में जो शहर के भीतर यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियां होती हैं, शहर के अंदर की रेलगाड़ी, और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, खास करके सुबह को और शाम को। ऐसी भीड़ होती है कि अंदर जाना प्राय असंभव है, और किसी न किसी तरह से अंदर चले जाओ तो बाहर निकलना प्राय असंभव है। और यदि स्टेशन को अभी तक 10 मिनट हैं तभी तैयारी करनी पड़ती है बाहर दरवाजे तक पहुँचने के लिए। यदि अंदर है तो स्टेशन आने के 10 मिनट पहले से धक्का मार के, झगड़ा कर करके, इधर उधर से रास्ता निकाल के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो दरवाजे के पास भी नहीं पहुंचोगे जब स्टेशन आ गया तो, फिर आने वाले कितने आगे स्टेशन में उतरना पड़ेगा कहीं, ऐसे बॉम्बे का भीड़ है ट्रेन का। तो ये ब्रह्मचारी थे तो वो ऐसे अटक गए, बड़े युद्ध करके ये चक्रव्यूह के बाहर निकलने से अभिमन्यु कर रहे थे ऐसे। वो किसी न किसी तरह से दरवाजे तक पहुंच तो गए, फिर गाड़ी तो रुकती है हर स्टेशन में केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड भी नहीं, तो पहुंच के खैर किसी न किसी तरह से धक्का मार के उतर गया, एक पैर नीचे रखा और बस दूसरा पैर रखे ही वाले थे ट्रेन चल हो गया। तो फिर भी पैर तो नीचे रख दिया दोनों पैर, लेकिन कंधे पे थोड़ा शोल्डर बैग था, बकरी बैग था, थैली था, वो थैली का ये कंधे पे वो बैग बीच में अटक गया उधर भीड़ में, और इतना पैक रहता है, जैम पैक रहता, पूरा कड़क बंद रहता है सब, इतने लोग रहते हैं कि वो अटक गया तो अटक ही गया उसमें, तो कंधे पे इतना ये और थैली अंदर, और ट्रेन चालू हो गया। अभी क्या करना, तो उसने जोर से चिल्लाया कृष्णा, और जैसे कृष्ण का नाम तुरंत सब खाली आ गया। वो सब आदमी भी उधर सब डर गए होंगे, कृष्ण क्या 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 तुरंत आराम से वो थैली बाहर निकल गया, फिर वो चले गए। तो कृष्ण का नाम पुकारने से हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन उस निस्सहाय भाव से पुकारना चाहिए। वो ब्रह्मचारी जब था, जिस भाव से उसने पुकारा कि अभी नहीं आएंगे, मदद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम इधर उतर जाएंगे, ट्रेन के नीचे भी गिर जाएंगे, तो उस निस्सहाय भाव से कृष्ण का नाम लिया। वो बचाओ पुलिस ये वो नहीं बोला, है ना। तो उसी प्रकार मृत्यु के समय भी हमें कृष्ण का नाम ऐसे पुकारना चाहिए, डॉक्टर को पुकारेंगे, वकील को पुकारेंगे, रिश्तेदारों को पुकारेंगे, है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। तो अभी से तैयारी करनी चाहिए उस तरह से निस्सहाय भाव से बुलाने के लिए, प्रैक्टिस अभ्यास करना है अभी से, पुकारना डाको, ये एक शब्द हमें याद रखना है, डाको कृष्ण को पुकारो, तो कृष्ण को पुकारते रहेंगे, सही ढंग से पुकारेंगे, तब सारी समस्या का समाधान हो जाए, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। जब हमारे जीवन में कुछ संकट आता है, कोई भय आता है, कोई चिंता आती है, कुछ भी होता है, बस कृष्ण का नाम पुकारो, निस्सहाय भाव से पुकारो, सब चिंता तनाव भय उदास होना उदासीनता सब खत्म हो जाएगा और तुरंत उत्साह आएगा, धैर्य आएगा, निश्चय आएगा फिर से। तो यहाँ सारे समस्याओं का समाधान बताया गया। यन नाम विवशो गृणन, गृणन मतलब जो स्वीकार करता है, विवश अनजाने में, तो जो अनजाने में कृष्ण का नाम लेता है उसको इतना फायदा मिलता है, तो जो भक्ति भाव से कृष्ण का नाम लेगा उसको कितना फायदा होगा, कल्पना कीजिए। जो प्रेम से शरणागत भावना से भगवान का नाम लेगा उसको कितना फायदा होगा। इसलिए हमें बड़े भक्ति भाव से कृष्ण के नाम को पुकारने के लिए अभ्यास करना चाहिए, और यदि वैसे नहीं पुकार पा रहे हैं तो कृष्ण नाम से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें आपको बुलाने के लिए वो शक्ति दीजिए, वो बुद्धि दीजिए, ताकि हम आपका आश्रय और ग्रहण कर सके, हम आपका नाम ले सके अच्छी तरह से। श्लोक बहुत सुंदर है, आपन्न संस्कृत संस्मृतिम संस्कृतिम घोराम यन नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेत स्वयं भवम भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में फंसे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी नाम से भयभीत रहता है। तो जिसके पास नाम है कृष्ण का, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं, केवल लेने वाले को लेना चाहिए नाम अपने पास, बस इतना सरल उपाय है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। कोई प्रश्न?
जो लोग भक्ति में नहीं रहते हैं वो लोग भी नाम अनजाने में देते रहते हैं, तो वो लोग मुक्त हो जाते हैं, जैसे उनका नाम रखते हैं या उनका ऐसे दूसरे दोस्तों को बुलाते हैं तो
कि ऐसे कई लोग होते हैं जिनका नाम कृष्ण राम होता है, तो उनको ऐसे अनजाने में पुकारते हैं तो वो मुक्त हो जाते हैं क्या, ये प्रश्न है। मुक्त होने की तैयारी में है, दरवाजा धीरे धीरे से खुल रहा है, अज्ञात सुकृति उनको मिल रहा है, अनजाने में भी उनको ये पुण्य भक्ति भक्तिमय पुण्य का संचय हो रहा है, और जब इसकी पूंजी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक दिन कई जन्म भी लग सकते हैं, जब ऐसे राम कृष्ण गोविंद हरि ऐसे सब नाम बुला के एक दिन ऐसी पूंजी बढ़ेगी ये ना भक्ति के पुण्य की, कि उसको आकर्षण होगा भक्तों के संग के लिए, और इस योग्य बन जाएगा तो भगवान उसको भक्तों का संग दिला देंगे, तब भक्तों के संग में आकर उसका एक आकर्षण से निर्माण हो जाएगा, आदो श्रद्धा, थोड़ी बहुत श्रद्धा हो जाएगी। ये आदो श्रद्धा तथा साधो संग, ये आदो श्रद्धा उत्पन्न होता है ये सब अज्ञात सुकृति से, अनजाने में किए हुए ये सब सेवा। इसलिए कितना महत्वपूर्ण है कि सबके नाम टॉमी बंटी वगैरह सब नहीं रखते, कृष्ण गोविंद नारायण हरि ऐसे रखने चाहिए। आजकल आधुनिक काल में लोगों को शर्म आता है भगवान का नाम रखने के लिए, थोड़े फैशन के हिसाब से अलग अलग नाम रख लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि भगवान का नाम रखने से कितना फायदा होता है। तो उसको नामाभास कहते हैं, बुला रहे हैं, जैसे अजामिल को तो हुआ ना कितना लाभ, अजामिल को नारायण का नाम लेने से उस समय मृत्यु के समय भक्ति नहीं प्राप्त हुई, लेकिन वो नरक से बच गए, पापों से मुक्त हो गए। और आगे चल के फिर उन्होंने 12 साल भगवान का नाम बहुत भक्ति भाव से लिया, तब जाकर वो भगवान के धाम को जा पाए।
फिर ये लोग नरक से बच जाएंगे
करते करते धीरे धीरे से। इसलिए नाम तो सबके ऐसे रखने चाहिए, कम से कम कितना फायदा होगा कितने लोगों को। और यदि कोई ऐसा प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाए समाज में किसी भी क्षेत्र में, तो सब लोग नाम लेते रहेंगे उसका, है ना। कितना फायदा होगा, भले उस व्यक्ति को गाली भी क्यों न दे। जैसे राजनीति में नेता होते हैं ना, उनको कोई लोग प्रशंसा करते हैं, कोई लोग गाली देते हैं, ये इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, कम से कम नाम तो ले रहे ना। जब एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती समय ठाकुर के समय एक अखबार ने कोई लेख छपा था, दो लेख थे दो अखबारों में, एक में भक्ति के अनुकूल थोड़ा था और दूसरा भक्तों के विरुद्ध और कृष्ण के विरुद्ध था। तो उन्होंने देखा तो भक्तों ने देखा ये अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा अनुकूल है, ये थोड़ा प्रतिकूल लिखा है उन्होंने, अच्छा नहीं लिखा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दोनों पढ़े, बोला नहीं नहीं ये वाला अच्छा है। बोला क्यों? क्योंकि इधर कृष्ण का नाम ज्यादा लिया है, कृष्ण का नाम नहीं लिया है। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कृष्ण 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 कृष्ण, बार 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 कृष्ण का नाम लेंगे। हाँ इतना है कि एक अपराध की भावना आती है, लेकिन जो अनजाने में ऐसा लेंगे कि इसमें मंत्री वंत्री होते हैं, किसी का नाम राम किसी का नाम कृष्ण किसी का कुछ, तो कितना फायदा होगा उनका केवल नाम से। और कोई प्रश्न?
हाँ Sometimes in a fearful situation.
हिंदी में पूछे, हिंदी में
महाराज जब हम कोई भय की अवस्था में जब हम पुकारते हैं नाम, वो हृदय से आता है नाम, लेकिन जब जब करते समय तो हम ऐसा सोच नहीं सकते कि हम भय के स्थिति में है और तभी हृदय से नहीं नहीं आता है नाम।
तो फिर भगवान हमको भय में डालेंगे ताकि हम उनको पुकारें। भगवान बोलेंगे सोचेंगे कि मेरा नाम नहीं ले रहा है, भय में डाल के ही ये नाम लेगा ऐसे, तो चलो उसको भय में डालो। फिर भगवान भय में डालेंगे, फिर हमका नाम फिर आएगा मुँह से। इसलिए भय में आवश्यकता नहीं है जाने की, लेकिन भय के बिना यदि हम ऐसा नाम नहीं ले सकते तो भगवान बोलेंगे ठीक है तो भय में डालेंगे। इसलिए हमें अपने मन को प्रशिक्षित करने का प्रयास करना चाहिए कि सही भाव से करें। कठिन है और कभी कभी नाम उच्चारण करते समय उतनी तीव्र भाव तो नहीं आती है जैसे कि जब हम भयभीत रहते हैं, ये तो भी स्वाभाविक है, फिर भी अपने को प्रयास तो करना चाहिए पूरा पूरा, हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे नाम से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपके नाम को पुकारने के लिए, सही ढंग से पुकारने के लिए हमें वो बुद्धि दीजिए, वो योग्यता दीजिए। जैसे हमारी रक्षा के लिए कोई हमको बंदूक देता है, लेकिन हमको बंदूक चलाना नहीं आता है ना, तो फिर फायदा ज्यादा नहीं होगा ना। कम से कम बंदूक है बोल के सामने वाला डरेगा, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि कुछ ऐसा आए चलाने नहीं आता है, तो है ना, इतना बड़ा अस्त्र हमारे पास है, नाम है, नाम ले रहे हैं बोल के बहुत सी चीजें दूर रहती है, ठीक से भी नहीं ले रहे फिर भी बहुत सी चीजें दूर रहती है। तो नाम सही लेंगे तो फिर कितना लाभ होगा। Yes, Ramabhadra Priya Prabhu?
Yes.
Okay. So we have to try. हमें प्रयत्न करना है, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि वो भाव हमको आप कृपा करके दे, भगवान के कृपा के बिना उनको हम पुकार भी नहीं सकते हैं, हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर है। इसलिए हमारी ये हरि नाम का जप जो है ये प्रार्थना है, तो ऐसे प्रार्थना के भाव में उनसे बोलना चाहिए, फिर हो जाएगा धीरे धीरे से। ठीक है पूर्व जन्म का सुकृति अजामिल का क्या था कि उसने अपने बच्चे का नाम टॉमी बंटी नहीं रख के नारायण रखा, ये सद्बुद्धि उसके पूर्व संस्कार के कारण हुआ, नहीं तो और भी कुछ नाम रखा होता तो उसको कोई फायदा नहीं मिलता, तो संस्कार इसमें आता है। और आगे चल के भी फिर उसने बचने के बाद जो आगे चल के भक्ति की वो भी उसके पूर्व किए हुए संस्कार के कारण है। आखिर अजामिल तो अपने योग अवस्था तक तो बहुत पुण्यवान एक ब्राह्मण था, केवल अचानक वो एक वेश्या के संग में आकर फिर सब सारा जीवन बिगड़ गया, उसके पहले तो पुण्यवान ब्राह्मण था। तो कोई अच्छा व्यक्ति भी होता है तो दुसंग से बुरे संग से कितना नुकसान हो सकता है इसको हम इसे जान सकते हैं। वो इमीडिएटली मतलब अभी दृष्टिकोण समझना चाहिए। वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो महाराज खटवांग ने एक क्षण में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया, परंतु उतनी तीव्रता चाहिए। तो जब ये सद्य है तुरंत कहा जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि किस दृष्टिकोण से बोला जा रहा है। हमारे लाखों 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 जन्म बीत गए हैं, कितने साल बीत गए, करोड़ों साल बीत गए। अभी जब हम कृष्ण नाम अच्छी तरह से लेंगे तो इस जन्म में ही हम मुक्त हो सकते हैं, ज्यादा से थोड़े जन्म लग सकते हैं। तो हम जितने साल यहाँ भौतिक सृष्टि में रहे हैं उसकी तुलना में जो करोड़ों करोड़ों सालों में एक जन्म दो जन्म पांच जन्म क्या है, 200 300 500 साल क्या है, कुछ भी नहीं, जल्दी हमको मिल जाता है। जैसे पहले टेलीफोन मिलने के लिए कितना 2-3 साल वेटिंग लिस्ट हुआ करता था, अभी हम कहते हैं अभी तो तुरंत मिल जाता है। तुरंत मतलब क्या, 1-2 दिन तो लग जाते हैं ना, लेकिन पहले के हिसाब से तुरंत हो जाएगा। पहले 2 साल लगता था, अभी 2 दिन लगता है, हाँ अभी तो तुरंत हो जाता है, ऐसे बोलते हैं। तो उस हिसाब से तुरंत ठीक है। नहीं, विश्वास करना चाहिए, समझ सकते हैं, क्यों नहीं समझ सकते कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। समझना मुश्किल नहीं है, केवल उसको अनुभव करना है। भगवान के नाम को पुकार के वो अनुभव आएगा। जितना हम हृदय से पुकारेंगे, जितना हम नाम का आश्रय लेंगे, उतना अनुभव साक्षात्कार बढ़ेगा कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है। यहाँ कहा गया है यन नाम विवशो ग्रहणन, जो स्वीकार करता है, नाम ग्रहण करना, और दूसरा है नाम का आश्रय लेना। नामाश्रय कोरी यतने तुमि ठाकोह अपन काजे, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं नामाश्रय कोरी, नाम का आश्रय लेना और नाम को ग्रहण करना, दोनों में थोड़ा अंतर है। इसलिए यहाँ विवश हो, जो अनजाने में भी नाम को लेता है उसको नाम ग्रहण कहते हैं, नाम को ग्रहण करता है, नाम को लेता है, फिर भी फायदा होता है। लेकिन जो भक्ति भाव से कृष्ण का नाम लेता है वो नाम का आश्रय लेता है।
आश्रय लेना मतलब निस्सहायक भाव से,
निस्सहायक भाव से कि यही मेरा आश्रय है, यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरा सब कुछ है। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता का आश्रय लेता है ना, हर चीज में निर्भर रहता है पिता के ऊपर, उसी प्रकार से भक्त भगवान हरि नाम के ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता है, पूरा विश्वास रहता है कि हरि नाम ही मेरे लिए पर्याप्त है, इसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये पूर्ण श्रद्धा होना कि हरि नाम ही सर्वस्व है, हरि नाम जब है तो और किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, केवल हरि नाम लेने से सब कुछ संपन्न हो जाएगा, यह है आश्रय, पूर्ण आश्रय लेना। तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़ा हो सकता है, बड़े समुद्र में बड़े बड़े जहाज होते हैं वो कभी डूब जाते हैं, जब तूफान आता है बड़े बड़े लहरें आती हैं तो वो डूब जाता है, बड़ा बड़ा जहाज, हजारों लोग भी अंदर होते हैं। लेकिन मछली, प्रभुपाद कहते थे, वो समुद्र के जल का आश्रय लेती है, इसलिए मछली तैर सकती है आराम से, तूफान हो लहरों के साथ ऊपर नीचे जाती है, उसको जी सकती है। लेकिन जहाज आश्रय नहीं लेता है जल का, जल के ऊपर से तैर के जाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए जब भक्त नाम का आश्रय लेता है अपना सब कुछ छोड़ देता है। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्णे भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए। यह है श्रद्धा, यह है आश्रय, यह पूर्ण श्रद्धा। श्रद्धा क्या चीज है? वो पूर्ण निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण का नाम का आश्रय लेने से सर्व कर्म कृत हो, सारे कर्म संपन्न हो जाएंगे, मेरी रक्षा हो जाएगी, भरण पोषण हो जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण का आश्रय लेने से। तो हमको ऐसे भाव से कृष्ण के नाम का आश्रय लेना चाहिए, भाव को, नाम को लेना चाहिए। हमको कल्पना करना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, और मृत्यु के समय भय का समय है, तो हम कैसे कृष्ण को पुकारेंगे, वो मन में विचार कर लेना चाहिए।
मृत्यु के समय में जो पेन होता है वो सबसे भय उत्पन्न होता है।
हाँ, मृत्यु से तो हर आदमी डरता है, लेकिन परीक्षित महाराज भी डर रहे थे मृत्यु से, इसलिए सुखदेव महाराज ने यही कहा। परीक्षित महाराज ने उत्तर दिया, प्रश्न पूछा था कि मृत्यु के द्वार में जो आदमी खड़ा है उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, और सुखदेव महाराज ने कहा, क्या कहा था, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। जो इच्छता अभयम्, जो इच्छा रखता है अभय होने के लिए मृत्यु से, उसको भगवान कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो मृत्यु के भय से ही आदमी मुक्त हो सकता है। ठीक है, हम मृत्यु के बारे में कैसे गंभीर हो सकते हैं? श्रवण करने से, बार बार श्रवण करेंगे तब गंभीर हो जाएंगे। श्रवण करने से क्या होता है, वो मन में बात बैठती है, बार बार सुनते हैं, वो ध्वनि का प्रभाव हमारे चित्त पे पड़ता है, इसलिए बार बार सुनने से, भक्तों के संग में बार बार पढ़ने से, बार बार चिंतन मनन करने से ये होगा। इसलिए ये क्लास में आना, और जब भी समय मिले थोड़ा प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना, इन सब चीजों को करने से एक गंभीरता अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अभी समय हो गया ना, तो राम कथा आज नहीं हुआ, कल का ये कृष्ण नाम कथा हो गया। एक ही है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा। ये शाम का रामायण कथा भी होता है, बहुत अच्छा है। हा? ऐसे थोड़ा फिलोसफी, थोड़ा दर्शन, थोड़ा कथा, थोड़ा कहानी जो शास्त्रों का, बहुत अच्छा। रोज सबको सुनना चाहिए। हाँ, तो कृष्ण प्रभु सुनाते हो सबको? बहुत अच्छा। हमारे शास्त्र में कितना कुछ है, रामायण है, भागवत है, महाभारत है, कितने पुराण हैं, हमारे आचार्यों की कथाएं हैं, कितने सारे हैं। जीवन भर भी सुनते जाए तो समय कम है। इसमें हमारे ऐसे सुनते जाएंगे तो हमारा रस बढ़ेगा भक्ति में, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा मिलेगी, साधना में और स्थिर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, सेवा भी और उत्साह से करेंगे। हमारे हृदय में सब अच्छी भावनाएं उत्पन्न होंगी, गलत भावनाएं नहीं आएंगी, निराशा उदासीनता नहीं आएगी, जीवन रसमय हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
मुझे पता है, वो मुझे पता है, आपको बनाऊंगा कौन सा है।